ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 49। फिर पीछे दोहराइए। न वेद कृपनः श्रेयः आत्मनः गुण वस्तु दृक तस्य तान इच्छतः यच्छेत यदि सहपि तथा विदः। न वेद कृपनः श्रेयः आत्मन गुण वस्तु दृक तस्य तान इच्छत यच्छेत यदि सह अपि तथा विदः। न वेद कृपनः श्रेयः आत्मनः गुण वस्तु दृक तस्य तान इच्छत यच्छेत यद् सह अपि तथा विदः। न वेद कृपनः श्रेयः आत्मनः गुण वस्तु दृक तस्य तान इच्छत यच्छेत यदि सह अपि तथा विदः। न नहीं वेद जानता है, कृपनः कंजूस जीवात्मा, श्रेयः परम आवश्यकता, आत्मनः आत्मा की, गुण वस्तु दृक जो त्रिगुण की सृष्टि से मोहित है, तस्य उसका, तान माया द्वारा उत्पन्न वस्तुएं, इच्छतः इच्छा करते हुए, यच्छेत प्रदान करता है, यदि यदि सह अपि वह भी, तथा विदह उसी प्रकार का मूर्ख कृपन जो अपने असली हित को नहीं पहचानता। इसका अनुवाद पढ़ता हूं श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की। मेरे पीछे दोहराइए। जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं वे कंजूस कृपण कहलाते हैं। वे आत्मा की परम आवश्यकता हित को नहीं जानते। यही नहीं, जो ऐसे मूर्खों की इच्छा की पूर्ति करता है उसे भी मूर्ख समझना चाहिए। इसका तात्पर्य पढ़ता हूं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, कृपण तथा ब्राह्मण। जो ब्रह्म या परम सत्य को जानता है और इस प्रकार अपने असली हित को पहचानता है वह ब्राह्मण है, किंतु कृपण वो है जिसके भौतिक देहात्मिक बुद्धि होती है, ये न जानते हुए कि मानव या देव जीवन को किस प्रकार बिताया जाए। कृपण त्रिगुणजन्य वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है। इस तरह भौतिक लाभों की कामना करने वाले कृपण मूर्ख होते हैं, जबकि आध्यात्मिक लाभ की कामना करने वाले ब्राह्मण बुद्धिमान हैं। यदि कोई कृपण अपना हित चिंतन किए बिना किसी से कुछ मांगता है और उसे यदि कोई वह वस्तु दे देता है तो वह भी मूर्ख है, किंतु कृष्ण मूर्ख नहीं है, वे अत्यंत बुद्धिमान हैं। जब कोई श्री कृष्ण से भौतिक लाभ की कामना करता है तो वे उसे वे वस्तुएं न देकर वे उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वे भौतिक कामनाएं त्याग कर उनके चरण कमलों में आसक्त हो जाए। ऐसी दशा में यद्यपि कृपण भौतिक वस्तुओं के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, किंतु भगवान उसकी सारी संपत्ति लेकर उस कृपण को बदले में भक्त बनने की सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में भगवान का कथन है, आमी विज्ञ ऐ मूर्खे विषय कहने देव स्वच्छरणामृत दिया विषय भुलाई। चूंकि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूं, अतः मैं इस मूर्ख को धन क्यों दूं, इसके बजाय मैं अपने चरण कमल की शरण के अमृत के लिए उसे प्रेरित करूंगा और उसके झूठे भौतिक सुख को भुलवा दूंगा। यदि कोई भक्ति के बदले भौतिक संपत्ति के लिए प्रार्थना करता है तो भगवान उसके धन को लेकर बदले में बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वे क्रमशः उनके चरण कमलों की सेवा करके संतुष्ट होने लगता है। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, यदि मूर्ख बालक अपनी माता से विष मांगे तो बुद्धिमती माता निश्चय ही उसे विष नहीं देगी, भले ही वे कितना भी अनुनय विनय क्यों ना करे। भौतिक व्याधि व्यक्ति को यह पता नहीं है कि भौतिक संपत्ति को स्वीकार करना विष अथवा जन्म मृत्यु के चक्र को स्वीकार करने के तुल्य है। बुद्धिमान ब्राह्मण भौतिक बंधन से अपनी मुक्ति की आकांक्षा करता है, यही मनुष्य का असली कल्याण है। जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं, वे कंजूस अर्थात कृपण कहलाते हैं। वे आत्मा की परम आवश्यकता हित को नहीं जानते। यही नहीं, ऐसे मूर्खों की इच्छा की पूर्ति करता है उसे भी मूर्ख ही समझना चाहिए। इस पूरे श्लोक के अंदर चर्चा आ रही है कृपण की। कृपण को साधारण भाषा में समझें तो कृपण का अर्थ क्या है? लिखा है कंजूस। कंजूस कौन होता है? कंजूस की परिभाषा क्या है? कंजूस किसे कहते हैं? आपके पास है परंतु आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। कपड़े बहुत हैं, पहनेंगे नहीं। पैसा बहुत है, खर्च नहीं करेंगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं लगाएंगे। दान नहीं देंगे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। अर्थात धन का व्यर्थ बोरियों में बंद रखा हुआ है परंतु उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। ऐसे व्यक्ति को हम कह देते हैं बड़ा कंजूस है जी, खर्च नहीं करता। अर्थात जो चीज जिसके पास उचित मात्रा में उपलब्ध है उस वस्तु को वो अपने प्रयोग में नहीं लाता, रादर उसको स्टॉक करके रखता है, संग्रह करके रखता है, बचा के रखता है। ये इसे इस्तेमाल नहीं करना, बड़ा ही कंजूस है। यहां चर्चा हो रही है कृपण की कि भौतिक संपत्ति को ही अपने जीवन का ध्येय मानना, इसमें कंजूसी कहां से आ गई? एक व्यक्ति भौतिक संपत्ति को अपने जीवन का ध्येय मानता है तो उसको जो है कंजूस कहा गया है। उसको कंजूस क्यों कहा गया है? वाई उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें उल्लेख आता है, याज्ञवल्क्य के मुनि जो है गार्गी से कहते हैं कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जिस व्यक्ति ने मनुष्य जीवन का अर्थ नहीं समझा, मनुष्य जीवन को भगवत प्राप्ति को प्राप्त करने के साधन नहीं बनाया, जिसने भगवत प्राप्ति करने के लिए इच्छा प्रकट नहीं करी, जिसने उस मार्ग पर प्रयास नहीं किया, उससे बड़ा कृपण और कोई नहीं। क्या अर्थ हुआ इसका? उसको एक फैसिलिटी अवेलेबल है, एक सुविधा मिल रही है। क्या सुविधा है? कि भगवत धन। देखिए मनुष्य जीवन के अंदर आप दो ही काम कर सकते हैं, तो टू ऑप्शंस। आपके पास केवल दो रास्ते खुले हुए हैं। एक रास्ता है कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करके सांसारिक भोगों में लिप्त होकर आप 84 लाख योनियों में बारंबार भ्रमण करते रहें, एक रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है? कि आप मनुष्य जीवन को प्राप्त करके 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर निकल जाएं। ये सुविधा केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही उपलब्ध है और किसी योनि में नहीं। देव योनि हो तो भोग योनि है, पशु योनि हो तो भोग योनि है। पशु की बात करते हैं तो पशु जो है वो कर्म नहीं कर सकता अपनी मर्जी से फल की प्राप्ति की इच्छा हेतु। आप पूरी बना सकते हैं, हलवा पूरी खा सकते हैं, कुत्ता खा सकता है बना नहीं सकता, तो कर्म फल का सृजन नहीं कर सकता। कर्म फल का सृजन करने की उपलब्धता पॉसिबिलिटी केवल मनुष्य जीवन में है। और देवताओं को भी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, जो भगवान ने एज देयर सबॉर्डिनेट जो दी हुई हैं, उन ड्यूटीज को ही परफॉर्म करने की परमिशन है, वो भी जो है कर्म फल का सृजन नहीं कर सकते। क्योंकि यही भगवद गीता कहती है कि जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो जीव लौटकर इस भौतिक संसार, इस पृथ्वी पर आता है। स्वर्ग की प्राप्ति पुण्य कर्मों के फल की वजह से होती है, परंतु लौटकर उसे फिर यहीं पर आना है, क्योंकि यहीं से फिर आगे का रास्ता है कि आपको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना है या 84 लाख योनियों से बाहर निकल जाना। मतलब इससे बड़ी फैसिलिटी आपके पास नहीं है। क्या फैसिलिटी है? कि आप इस भौतिक जीवन में, इस संसार में रहते हुए, भौतिक जीवन से अलिप्त होते हुए, उसमें लिप्त ना होते हुए आप भगवत धाम के रास्ते पे प्रयास करें और उससे बाहर निकल जाएं। इससे बड़ी फैसिलिटी और कोई नहीं मिल सकती। और इस फैसिलिटी को जो इस्तेमाल नहीं करता वो कृपण है, वो कंजूस है, उससे बड़ा कंजूस और कोई नहीं। भगवान जो है भगवद गीता के अंदर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब चर्चा चल रही है तो अर्जुन ने कह दिया है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृछामि त्वम धर्म सम्पूर्ण चेता यक्षे स्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हेम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने इस भौतिक संसार के अंदर बहुत बहाने लगाए कि किसी तरीके से मेरे से हत्या ना हो, मैं किसी का मर्डर न करूं, मैं किसी को युद्ध में हताहत न करूं। भगवान ने भगवद गीता का उपदेश देने के लिए उसके अंदर कौटुंबिक मोह को जागृत किया है, परंतु अर्जुन से मुख से क्या प्रश्न कहलवाया है और कब कहलवाया है कि अर्जुन ने सारे बहाने लगा लिए हैं। अल्टीमेटली स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान होगी, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, हमसे पाप कर्म हो जाएगा वगैरह वगैरह। जिन्होंने हमको पाला है, जिन्होंने हमको पढ़ाया है, उनके ऊपर हम कैसे अटैक कर सकते हैं, उनको हताहत कैसे कर सकते हैं। और अल्टीमेटली अर्जुन ने कहा है कि मैं अपनी कृपण कार्पण्य, वहां कृपणता की बात आ रही है, कार्पण्य दोषो मतलब अब कृपणता का दोष मुझ में आ गया है। क्यों आया है? धर्म सम्मूढ़ चेता, मूढ़ का मतलब क्या होता है? मूर्ख। मैं मूर्ख बन गया हूं, मुझे धर्म क्या है इसकी चेतना नहीं रही। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। मतलब जब कृपणता का दोष आ जाता है, जब आपके अंदर कंजूसी का दोष आ जाता है, तब आपको यह नहीं मालूम होता है कि आपके लिए क्या अनुचित है और क्या उचित। आप फैसला नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप। क्यों? कि अब आप मूर्ख बन गए। आपके पास वस्तु उपलब्ध है, परंतु आप उस वस्तु का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, करना नहीं जानते हैं, या करना जानते भी हैं तो नहीं करते हैं, नहीं करेंगे जी, ये हमने बचा के रखा हुआ है। एक व्यक्ति के घर में उसको लूटने के लिए आ गए, चोरों ने उसके कपड़े तक उतरवा लिए और नीचे उसने देखा कि उसके उसने पिस्टल बंदी रखी है, तो चोरों ने पूछा भाई ये पिस्टल किस लिए, कहता इमरजेंसी के लिए बचा के रखी है। कहते इससे बड़ी इमरजेंसी क्या है कि तेरे को लूट लिया, तेरे कपड़े उतार दिए। पर नहीं, संग्रह, संग्रह मीन्स बचा के रखना, मैंने इसको यूटिलाइज नहीं करना है। इसी तरह हम जो है इस शरीर की प्राप्ति के बाद इस शरीर को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, हमने इसे बचा के रखा किसके लिए, भौतिक भोग भोगने का, इससे आनंद लूंगा। ये याति ने क्या किया, बुढ़ापा आ गया है, भौतिक एंजॉय करना चाहता है, क्या मांगा उसने, क्या कहा उसने कि मेरे को अपने पुत्र से रिक्वेस्ट कर रहा है, पुत्रों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे आप अपना यौवन दे दीजिए। अरे तू बुढ़ापे में आ गया, भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चल। वो नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है कि मुझे यौवन उधार दे दीजिए कुछ वर्षों के लिए, क्योंकि मैंने अभी जो है अपने यौवन का आनंद नहीं लिया है, मेरी इंद्र तृप्ति अभी संपूर्ण नहीं हुई। रिजल्ट क्या निकला, जड़ कहां से शुरू हुई, ये याति से। नेक्स्ट कौन आए, शांतनु। शांतनु ने क्या किया, सत्यवती से विवाह किया। भीष्म को दो प्रतिज्ञा लेनी पड़ी, भीष्म क्यों कहलाए, देवव्रत भीष्म क्यों कहलाए, अपने पिता की इंद्र तृप्ति की पूर्ति करवाने के हेतु। कि जब सत्यवती के पिता ने शर्त रख दी कि गद्दी के ऊपर, राज सिंहासन के ऊपर सिर्फ सत्यवती की संतान ही बैठनी चाहिए और कोई नहीं, तो देवव्रत ने जो है पहली कमिटमेंट करी उनके साथ, यस आई वॉन्ट टू फेवर माई फादर, मैं अपने पिता की सहायता करना चाहता हूं, किसमें, इंद्र तृप्ति में, यस ही कैन गो फॉर मैरिज एट ए ओल्ड एज, तो मैं गद्दी का मोह छोड़ देता हूं, मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए, राज सिंहासन आपकी पुत्री के ही वंशज संभालेंगे। पर पिता ने दूसरी शर्त रख दी कि तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी संतान भी तो डिमांड कर सकती है, इसमें मेरा हिस्सा दीजिए। विश्वा कुबेर से रावण ने इसी तरह प्राप्त किया था, क्योंकि दोनों भाई थे, दोनों की माताएं अलग अलग थीं। कैकसी ने रावण को उकसाया था कि तुम जाओ और जाकर जो है अपने पिता से कहो कि जैसे जो है आपने रावण लंका जो है कुबेर को दी हुई है उसमें मेरा भी हिस्सा है। इसी तरह जो है जब शांतनु के तो ठीक है उनके पुत्र बन जाएंगे, पर तुम्हारे पुत्र अगर कॉम्पिटिशन में आ गए तो क्या होगा। उसने कहा मैं विवाह ही नहीं करूंगा, आजीवन अविवाहित रहूंगा। किस लिए हुआ, इंद्र तृप्ति के लिए, कि इन ओल्ड एज के अंदर जाके भी इंद्र तृप्ति अभी संपूर्ण नहीं हुई है, अभी मन नहीं भरा है, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए सारी कलाकाजियां चल रही। यहां जो है क्या लिखा है, जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ जीवन का परम ध्येय मानते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान है तो भी आंखें मूंदी हुई हैं। हां ठीक है, राधिका रमन जी हैं, भगवान है, उनका विग्रह है, कृष्ण बलराम है, उनका विग्रह है, भगवान है, ठीक है, परंतु मेरा अभी जो है ना मन इनकी तरफ नहीं है। पत्नी ने कहा मुझे जरा कृष्ण बलराम मंदिर जाना है, मुझे दर्शन करने हैं, कथा सुननी है। अच्छा अच्छा मैं तुमको जो है गाड़ी पे छोड़ दूंगा बाहर, जब कथा खत्म हो जाए, कीर्तन पूरा हो जाए तो मिस्ड कॉल मार देना, मैं आके ले जाऊंगा। होता है, आई हैव लिटरली सीन इट, यहां नहीं बहुत जगह देखा है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, बहुत लोग सवाल करते हैं क्या करें। देखो जी मैं तो बिल्कुल मानती हूं कि मुझे कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है, मैं प्याज भी नहीं खाती, लहसुन भी नहीं खाती, भगवान को भोग लगाती हूं और घर वाले कुछ करते ही नहीं हैं, है वो तो मंदिर भी नहीं आते हैं, तो मैं क्या करूं, कैसे उनको समझाऊं। समस्याएं हैं, इलाज भी है, परंतु सवाल क्या है कि सुविधा उपलब्ध है। सुविधा उपलब्ध होते हुए भी आप सुविधा का प्रॉपर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इससे बड़ा कृपण कोई दूसरा नहीं होता। यही अर्जुन कह रहा है कि मेरे में कृपणता का दोष आ गया है, दोष आ गया है मेरे में। किस चीज का दोष आया है, कंजूसी का। क्या कंजूसी आई है कि मैं धर्म को जानता हुआ भी आज धर्म से विमुख हो रहा हूं, धर्म को भूल गया हूं, धर्म सम्मूल चेता, मुझे मालूम ही नहीं है कि जीव का धर्म क्या है। अब फॉरगॉटन, जैसे कहते हैं ना, एग्जाम देने गए उसके पहले ब्लैकआउट हो गया, सब भूल गए, खूब पढ़ाई करी, एग्जाम में ये लिखूंगा ये लिखूंगा ये लिखूंगा, खूब आदमी बच्चा पढ़ के जाता है, और जब जाके एग्जाम में बैठता है पेपर सामने आता है तो ब्लैकआउट। अर्जुन का पेपर आया है, लड़ना है भाई तेरे, घर से लड़ने आया नहीं आया, घर से अर्जुन क्या करने आया था? कृष्ण अर्जुन को बुलाने गए थे कि अर्जुन कृष्ण को बुलाने गया था? कौन गया था, कौन बुलाने गया था? सहायता कृष्ण ने अर्जुन से मांगी थी या अर्जुन ने कृष्ण से मांगी थी? किसने सहायता मांगी थी? तो अब तुम जो है सारा तामझाम अरेंज करके भगवान कृष्ण को सारथी बना के और युद्ध भूमि से पलायन करना चाहते हैं। क्यों करना चाहता है? कि मैं धर्म को भूल गया हूं, आप ब्लैकआउट हो गया, अर्जुन में ब्लैकआउट हो गया, नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। फिर क्या कह रहा है कि मेरे लिए जो यक्ष है श्या निश्चितम, निश्चित करिए, डेफिनेट करिए, मुझे समझाइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मेरे लिए क्या उचित है, ये मुझे आप बताइए। भाई तू युद्ध करने आया था, उचित अनुचित का भेद करके आया था कि नहीं आया था? तेरी माता ने तेरे को आदेश दिया, कुंती महारानी ने आदेश दिया है, महाभारत पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, कुंती महारानी कहती हैं अपने, जाओ मेरे पुत्र को ये संदेश दे दो। ये संदेश दिया उन्होंने भीम के लिए कि जिस कार्य के लिए क्षत्राणी पुत्र को जन्म देती है वो कार्य पूरा करने का समय आ गया। लड़ने मरने की बात नहीं कर रही वो, क्या बात कर रही है? अधर्म के विनाश की बात कर रही है। दो कारण बने युद्ध के लिए, पहला कारण बना द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास, और दूसरा कारण बना जिसके लिए फाइनल कील ठोकी गई यस युद्ध होना है, वो कृष्ण को कैद करने का प्रयास जब वो राजदूत बन के शांति दूत बन के दुर्योधन की सभा में गए थे। ये अब उस कार्य को पूरा करने का समय आ गया है। तो अर्जुन ने अपनी माता के वर्ड्स को इन टोटो एज इट इज एक्सेप्ट किया, आदेश माना, संदेश को सुना, उसको आदेश के रूप में लिया, और आदेश को मानने के बाद युद्ध करने के लिए आया। युद्ध करने के लिए सेनापति का डिसीजन हुआ, दोनों पार्टियों ने मिलकर जो है जगह डिसाइड करी कि हमें युद्ध का, आज की तरह छापामारी युद्ध नहीं थे कि चोरी से चुपके से रात में अटैक कर दिया, वॉज ओपन। अब महाभारत पढ़ेंगे तो भगवद गीता के जो पहले के अध्याय हैं उनके अंदर बहुत क्लियर कट चर्चा है कि दोनों सेनाएं संध्या के समय, संध्या काल युद्ध समाप्त होने पर जब सूर्यास्त हो जाता था एक दूसरे के शिविर में प्रवेश कर सकते थे, मुख्य मुख्य लोग एक दूसरे के शिविर में जा सकते थे, हाय हेलो कर सकते थे। आज ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि सारा लड़ाई लड़ी, शाम को पूछा, हाँ जी आज मैंने वहां वहां मारे थे, आपको तकलीफ तो नहीं है, यहां आपको कष्ट तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अब महाभारत पढ़िए। अब अर्जुन ने सारी सेना को तैयार किया है स्पेशली युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए, सहायता प्राप्त, सहायता लेने के लिए भगवान कृष्ण के पास गया है, और उसने जो है वहां पे कृष्ण को मांगा, स्वयं आप मेरे साथ रहेंगे, मुझे आपकी एक अक्षौणी नारायणी सेना नहीं चाहिए। हालांकि पहला ऑप्शन अर्जुन को मिला था कि तुम चाहे एक अक्षौणी नारायणी सेना ले लो या तुम मुझे ले लो, मैं आपको लेता। निहत्ता युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे भगवान कृष्ण, उसने कहा नहीं, आई वॉन्ट यू। जब तू उन्हें लेके आया है, युद्ध करना चाहता है, और तेरे पास युद्ध करने की सारी फैसिलिटीज हैं, क्या फैसिलिटीज हैं? अग्नि देव द्वारा दिया गया रथ जो खांडव वन जलाने पर तेरे को अग्नि देव ने भेंट दिया था कि तूने अग्नि देव की उदर की रक्षा करी थी जब उनको यज्ञ में, जब हवन में जो है बहुत सारे समधियां वगैरह समाधि उपलब्ध होती हैं तो अजीर्ण हो गया था, उसको जलाने में तूने सहायता करी, उनके अजीर्ण दूर किया, उन्होंने तेरे को रथ दिया। नौ गाड़ियों, नौ रथों के बराबर उस रथ के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी थी, नौ रथ के बराबर इतने आयुध, इतने अस्त्र शस्त्र लेके अर्जुन जो है उस रथ पे विराजमान था। गंधर्व राज चित्र द्वारा दिए गए श्वेत घोड़े, उन घोड़ों की क्वालिटी ये थी कि 100 घोड़े गिफ्ट किए गए थे, 100 में के कभी भी 99 नहीं बनेंगे, 100 के 100 रहेंगे। जैसे ही कोई घोड़ा जो है मृत्यु को प्राप्त होगा, नया घोड़ा उसकी जगह ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा, ये क्वालिटी थी उसके। तेरे रथ में कोई हर्जा नहीं है, दुनिया भर का तामझाम तेरे रथ पे अवेलेबल है, और प्लस रथ की ध्वजा पे हनुमान जी विराजमान है, जो अपनी हुंकार भर से ही दुश्मनों के हृदय को विदीर्ण करने में सक्षम है, कर रहे हैं। तो अपने सारे लाभ लश्कर लेके आया है और फिर क्या कह रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा। कंजूस हुआ कि नहीं हुआ, कृपण हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से आप समझिएगा कि मनुष्य शरीर मिला है, सारी सुविधाओं को त्याग के, अंडरस्टैंड करके, सारी भौतिक सुविधाओं को त्याग के, उन भौतिक सुविधाओं में जो जरूरी है उनको भगवान की सेवा में प्रयोग करने के लिए, परंतु हम उन सुविधाओं को भगवान की सेवा में न प्रयोग करके अपने प्रयोग में रहते हैं और धन को कैद करके रखते हैं। कैसे कैद करते हैं, जैसे रावण ने सीता जी को किया। अंत क्या हुआ, रावण का संहार। यहां संहार के मरना तो सबको है जी, मेरा क्या संहार हो रहा है। मैंने अगर लक्ष्मी को कैद भी कर लिया, मैंने जो है बड़े बड़े महल बना लिए, मेरे ड्राइंग रूम में 3 करोड़ रुपया लगा, सच ए वंडरफुल ड्राइंग रूम आए। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर, मैं कीर्तिनगर में लेक्चर दिया करता था किसी प्रभु जी के यहां, तो कहने लगे जी हमारे पड़ोसी डॉक्टर है। मैंने कहा हाँ, ये डॉक्टर मेरा स्टूडेंट हुआ करता था जब मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में था। कहते हैं डॉक्टर साहब उन्हें 1 करोड़ रुपया अपने ड्राइंग रूम से लगाया। इट इज ए टॉक ऑफ 2003 या 2002 की बात है। ये 1 करोड़ रुपया ड्राइंग रूम में लगाया है, नहीं लगा था तब भी उसमें बैठ रहा था वैसे ही बैठता था जैसे अब बैठता है, बैठने में स्टाइल तो नहीं बदल गया। सोफा था अब भी सोफा है, तब भी सोफा था अब भी सोफा है, पर 1 करोड़ रुपया ड्राइंग रूम में लगा दिया। संग्रह, संहार हो रहा है, रावण की तरह संहार हो रहा है, इसका क्या अर्थ है। अरे मैंने तो घर पे पैसा लगाया है, मैंने तो अपने भोग विलास पे पैसा लगाया है, तो संहार, मरना तो सबको, संहार का मतलब है मरना, मरना तो सबको है, वो भी मर रहा है मैं भी मर रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ता है। आप क्या बात कर रहे हो जी, लक्ष्मी को कैद कर लिया तो रावण का संहार हो गया। यस, संहार का मतलब यह है आपकी आत्मा का हनन हो रहा है, आप बारंबार जन्म और बारंबार मृत्यु के चक्र में फंस रहे हैं, यह असली संहार है। असली संहार क्या है कि आपने अपनी आत्मा का हनन किया है, आप बन गए हो इंद्रिय रमन, आप इंद्रियों में रमन करते हो। अब तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो तीसरे अध्याय के अंदर चर्चा आती है, स्पष्ट लिखते हैं भगवान, कह रहे हैं कि हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है, ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ में जीवित रहता है। अघायु इंद्रिय रामो मोहम स पार्थ स जीवति। आप इंद्रियों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उसके प्रति भोग संग्रह कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या है कि आप बार बार जन्म लेंगे और बार बार मृत्यु को प्राप्त होंगे। दिस मीन्स कि आप अपनी आत्मा का संहार कर रहे हो, असली संहार ये हो रहा है, और यू आर गेटिंग इनटू ए विशियस साइकिल। और भगवान कहते हैं दूरेन ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम विच्छे कृपणा फल हितवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। स्पष्ट उल्लेख, कृपणता क्या है मनुष्य जीवन के अंदर, जो मैंने पहले बताया याज्ञवल्क्य जी जो है गार्गी से कहते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त होते हुए भी जो व्यक्ति सकाम कर्मों को भोगना चाहता है या इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करता है, उससे बड़ा कृपण और कोई नहीं है। जो उसे एक ऐसी सुविधा मिली है उससे बड़ी सुविधा और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य जीवन ही आपको वो जीवन है जहां से आप या तो भगवत मार्ग में जा सकते हैं या 84 लाख योनियों के मार्ग में जा सकते हैं। चॉइस lies with you। अब यहां कहते हैं इसके बाद वे आत्मा की परम आवश्यकता हित को नहीं जानते। जानना दो तरीके से होता है, एक है सुपरफिशियल, एक है डीप, ऊपरी तौर पे। हाँ जाता हूं, हाँ पार्क में मिला करता है सवेरे मेरे को, अच्छा है, कपड़े अच्छे पहनता है, जूते अच्छे पहनता है, देखने में अच्छा वगैरह वगैरह वगैरह, आउटर लुक्स देखी और आप उसको जान गए। अरे इसको तो मैं जड़ से जानता हूं, इसके मन में क्या रहता है, होठों पे क्या रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे सोता है, कहां घूमता है, किसके साथ जाता है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। ये डीप जानना है, अब उसके बारे में हर चीज जानते हैं, हर चीज, इट्स मी अ स्मॉल थिंग। परंतु मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी आपने आत्मा की रिक्वायरमेंट को नहीं जाना, इससे बड़ा कृपण और कोई नहीं। आपने सुपरफिशियली जाना, क्या जाना, आपने केज अर्थात पिंजरे को पॉलिश कर रहे हैं, अंदर बैठा जो पक्षी है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं है, इसलिए उससे बड़ा कृपण, उससे बड़ा कंजूस और कोई नहीं हो सकता। आपको यह जानना है कि मेरे शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको यह जानना है कि मेरी आत्मा की रिक्वायरमेंट क्या है। अब इन दोनों की रिक्वायरमेंट को जान के इनमें तालमेल बिठाना है। अजी मैं तो आत्मा के बारे में जानता हूं और क्या जरूरत है, आत्मा के तो कपड़े होते ही नहीं, नंगा रहूंगा मैं, कपड़ा ही नहीं पहनूंगा, आत्मा कपड़े थोड़ा पहनती है, आत्मा ने तो शरीर रूपी कपड़ा पहना हुआ है। आई नो द रिक्वायरमेंट ऑफ माई सोल, मैं तो आत्मा के बारे में जानता हूं, मैं तो कपड़े पहनूंगा ही नहीं, इज इट ओके, नहीं। तालमेल बिठाना है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट बिटवीन टू, दोनों के अंदर तालमेल कैसे बनेगा, समन्वय कैसे होगा, क्या मुझे इसके लिए चाहिए और क्या मुझे उसके लिए चाहिए, मिनिमम इसके लिए शरीर के लिए, मैक्सिमम आत्मा के लिए, बियर मिनिमम रिक्वायरमेंट मुझे अपने शरीर की फुलफिल करनी है। परंतु यहां परफेक्ट में क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, कि जो व्यक्ति बियर मिनिमम से बियर मैक्सिमम पे चला जाता, अर्थात शरीर को भोगने के लिए ही भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब भगवान जो है देखते हैं कि इसकी भक्ति का लेवल क्या है, मतलब क्या चाहता है, इसको क्या मिलना चाहिए, इसको लिबरेट करना है। भगवान ने कभी आपसे, कभी आपने पढ़ा होगा, जितनी कहानियां सुनी होंगी, जब भी कोई देवी देवता या भगवान प्रकट होते हैं तो क्या कहते हैं, वर मांगो, कहते नहीं कहते, क्यों कहते हैं वर मांगो, वाई, आप देने आए हो ना, जो देने आए हो वो दे दो। राजा द्रुपद ने जब शंकर जी की पूजा करी, ध्यान लगाया, सेवा करी, उनकी भक्ति करी, तो जब शंकर जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा जा तुझे पुत्री की प्राप्ति हो, पुत्री दे दी। तो द्रुपद ने कहा भी देखो मैंने तो नियम पूर्वक विधि पूर्वक आपकी पूजा करी है, मैंने नियमों में विधि में कोई कमी नहीं छोड़ी है, 100% परफेक्शन में मैंने आपकी पूजा करी है, और आप प्रकट हुए हो तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि तुझे क्या चाहिए, आपने अपने आप कैसे दे दिया, आपने अपने आप कैसे दे दिया, अरे मुझे तो पुत्र चाहिए था, आपने पुत्री दे दी, दिस इज नॉट डन। क्योंकि देवता लोग जो हैं आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपकी रिक्वायरमेंट, वर, वर मांगिए मैं वर देता हूं, वो देने के लिए बाध्य हैं, दे आर कंपेल्ड टू गिव यू व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। तब शंकर जी फंस गए, अरे भैया क्या हो गया, मैंने तो वर दे दिया लड़की का, इसको लड़का चाहिए था। अब द्रुपद ने आर्गुमेंट कर दिया, ये नहीं कि दे दिया तो चुपचाप चले जाओ, आर्गुमेंट कर दिया, मुझे तो पुत्र चाहिए था, आपने पुत्री क्यों दे दी, बोले अच्छा यही पुत्री पुत्र बन जाएगी, तो वही पुत्री जो है शिखंडनी समय पाकर पुत्र बनी, हिजड़ा नहीं थी, वो लोग कहते हिजड़ा था, हिजड़ा नहीं था, यूनुक नहीं था, किन्नर नहीं था, पुत्री से पुत्र में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये कैसे हुआ है, ये स्थूलाकर्ण यक्ष के माध्यम से हुआ, परंतु रिक्वायरमेंट क्या है, भगवान के पास जाते हैं तो रिक्वायरमेंट क्या है ये जानने का प्रयास नहीं किया तो हमसे बड़ा कृपण और कोई नहीं। देखिए क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, भगवान के बारे में जो जानता है इसका मतलब है भगवान की इच्छा के बारे में जानना जरूरी है। इफ आई नो यू आई मस्ट नो व्हाट इज योर डिजायर एंड हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर मैं भगवान के बारे में जानता हूं क्या, पहली बात तो यही है। जानने का अर्थ क्या होता है? मेजरमेंट। आप बिल्कुल उसके बारे में कम, इतना ऊंचा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना बड़ा वगैरह वगैरह, आप सारी चीजें जानते हो। आप इस गिलास के बारे में जानते हैं? हाँ जी जानता हूं। आप इसकी मेजरमेंट आपने देख ली है, व्यू में आ गई सारी वगैरह वगैरह, सारा कुछ आपको पता लग गया है। भगवान अप्रमेय है, उनको नापा नहीं जा सकता, उनको किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। अनंत है, अनंत, उनको आप किसी लिमिट में नहीं बांध सकते। तो भगवान के बारे में हम पूरे रूप से जानते ही नहीं। जितना भी जानते हैं, जितना भी भगवान के बारे में जानते हैं, तो उस जानने में क्या चीज मुख्यतः उभर के आती है कि हमें भगवान की इच्छा के बारे में जानना चाहिए। व्हाट डज ही रिक्वायर फ्रॉम अस? तो क्या कहते हैं, वो तू मेरे घर आ जा वापस, यहीं से गया था ना तो मेरे घर आ जा वापस। ये उनकी परम डिजायर है, परम डिजायर। और वापस आने के लिए मैं तेरे को फार्मूला दे रहा हूं। क्या फार्मूला है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अपना मन मुझे दे दे, मतलब तेरे मन के अंदर मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। एक क्षण के लिए भी मेरा विस्मरण तेरे लिए असहनीय हो जाए तो उसको सह नहीं पाए। दैट इज द लेवल व्हाट इज रिक्वायर्ड। हम क्या करते हैं, मंदिर में आए, ठाकुर जी के आगे खड़े हुए, उसके बाद आंख बंद करी, हाथ जोड़े और कोई ना कोई इच्छा, सुख शांति आ जाए घर में। कुछ नहीं मांगा, मैंने बंगला नहीं मांगा, कार नहीं मांगी, गाड़ी नहीं मांगी। अरे भाई सुख का मतलब क्या है कि मैं बस में धक्के खाता हुआ चलता हूं, गाड़ी आ जाएगी तो सुख मिल जाएगा? इनडायरेक्ट तो रिक्वायरमेंट हो गई, डायरेक्टली नहीं मांगा, पर इनडायरेक्टली क्या है कि मेरे घर में सुख और शांति आ जाए। तो आपके मन में भगवान है कि सुख और शांति है? कौन है? भगवान कहते हैं कि तेरे मन के अंदर से एक क्षण के लिए भी मेरा विस्मरण असहनीय दुखदाई होना चाहिए। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यश, तेरी चेतना में मेरे सिवाय और कोई होना ही नहीं चाहिए, तेरा अपना शरीर भी नहीं। और तेरे चिंतन में क्या है? सुख और शांति। तूने बंगला गाड़ी कार कुछ नहीं मांगी है, सुख शांति मांगी है, पर जब तू मेरे सामने आया है तब भी तेरे मन के अंदर किसी वस्तु की चाहना है। तो तेरे मन में मैं कहां से आया? इसका मतलब है कि तुझे ये नहीं पता है कि मेरे सामने खड़े होकर क्या मांगना है। तुझसे बड़ा कृपण और कोई है ही नहीं, तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने शरीर के बारे में सोच रहा है, अपने आनंद के बारे में सोच रहा है, भौतिक तालमेल के बारे में सोच रहा है, इंद्र तृप्ति के बारे में सोच रहा है, परंतु तूने यहां से बाहर कैसे निकलना है, उसका फॉर्मेट क्या है, इसके बारे में तू नहीं सोच रहा है। तो तेरे से बड़ा कृपण और कोई है ही नहीं। यही प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि कोई कृपण अपना हित चिंतन किए बिना किसी से कुछ मांगता है, मेरा हित किस में है? भगवान ने कहा, मन मना बहु मधुर, पहले कहा कि मैं तेरे को सर्वज्ञोत्तम ज्ञान दे रहा हूं, मोस्ट सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मेरा आदेश है। संदेश, उपदेश और आदेश, तीनों में फर्क है। संदेश इज मैसेजिंग। आप शाम को 4 बजे वहां मिलना जी, हाँ मैसेज हो गया, यही संदेश हो गया। इनको संदेश दे देना प्रभु जी को, है 4 बजे मुझे वहां मिलेंगे, संदेश कर दिया। उपदेश ज्ञान की प्राप्ति आपको। अब उप का मतलब होता है नीचे, नीचे आप जो है जिससे उपदेश प्राप्त कर रहे हैं उसके नीचे स्थान पर बैठ के आप जो है उससे एक संदेश प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान की बात प्राप्त कर रहे हैं। एंड आदेश, आदेश इज इंस्ट्रक्शन। You must meet me at 4 o'clock. Definitely. No failures. This is आदेश। वही संदेश जब authoritative हो जाता है तो आदेश बन जाता। तो भगवान यहां पर परम आदेश दे रहे हैं देखा अब अर्जुन समझने वाला नहीं है, इसने बड़े सवाल कर दिए, प्रश्न पे प्रश्न ठोकता जा रहा है, इसकी बात समझ में नहीं आ रही। क्या नहीं समझ में आ रही? कि मेरे से पाप कर्म हो जाएगा, ये अभी तक पाप पुण्य के चक्कर में फंसा हुआ, इतना मैंने समझा दिया तब भी पाप पुण्य के चक्कर में फंसा हुआ है। भगवान कहते हैं हमें से आखिरी खुराक देता हूं, लास्ट डोज, फाइनल डोज। आखिरी खुराक क्या है? सर्वधर्मान प्रत्यजन मामेकम शरणम भजा, कि तू सिर्फ मेरी शरण में आ जा, तुझे सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पापों से मुक्त होने के लिए अर्जुन को एक कंडीशन दी। अब जाते हैं ना अखबार में आता है ये अवेलेबल, और नीचे लिखा होता स्टार लगा के कंडीशन अप्लाई। तो भगवान ने कहा तू पापों से मुक्त होना चाहता है ना, तू तेरे पाप तेरे पे मन में समाया हुआ है ना, है तेरे को पापों से रिलीज कर दूंगा मैं। कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या है? सर्वधर्मान प्रत्यजम, मन मना भव मद भक्तो वद्याजी माम नमस्कुरु, ये चार कंडीशन थी। इसके ऊपर सुपर कंडीशन लगाई फाइनल, वो क्या लगाई? सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में। जो चीज भगवान पहले कहते आ रहे हैं बारंबार कि मेरी शरण में आना है, मेरी शरण में आना है, मेरी शरण में आना है, उस बात को भगवान ने यहां पर तर्क की दृष्टि से क्लियर कर दिया है कि मेरी शरण में आने का लाभ यह है कि तू सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। तो यहां पर जो है जिसने इस कंडीशन को नहीं समझा, जिसने भगवान को हृदय में विराजमान नहीं समझा, जिसने ये नहीं समझा है कि भगवान मेरे हृदय में मुझे प्रेरणा देने वाले हैं, उस प्रेरणा को मुझे स्वीकार करना है, भगवान बैठे हैं परंतु मैं उनकी प्रेरणा को स्वीकार नहीं कर रहा, उससे बड़ा कंजूस और कोई नहीं हो सकता। या कृपणता की बात हो रही है, ये कंजूसी के लेवल्स की बात हो रही है, किस किस मामले में आप कंजूस बन जाते हो। तो यहां कह रहे हैं कि जो अपने हित को नहीं जानते, तो आपका हित सांसारिक भोगों में है या आपका हित इस संसारी भोगों के स्थान को छोड़कर आध्यात्मिक भोगों में है, ये आप हित की बात नहीं बताया आपको। जिस दिन ये मालूम पड़ जाएगी आपके जीवन की नैया बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी, खवैया बदल जाएगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। उसी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही भगवान ने जो है भगवद गीता का उपदेश दिया है महाभारत में, खासतौर पर सिचुएशन में। देखिए आप कितने लकी हो, अर्जुन को उपदेश कब मिला? जब उसके पास गांडीव था और सब रिश्तेदार सामने खड़े थे, उनको उसे मारना था। आपके पास गांडीव है? है नहीं। आपने अपने रिश्तेदारों को मारना है? नहीं। परंतु फिर भी आपको भगवद गीता का संदेश, उपदेश और आदेश सुनने के लिए मिल रहा है। कितने लकी हैं आप। अब उससे ऊंचे लक की बात करता हूं। अर्जुन गांडीव अपने घर से लेके आया था, उसका हथियार था। उस समय युद्ध भूमि के अंदर युद्ध करने के लिए आपको गांडीव स्वयं भगवान की ओर से गुरु के माध्यम से मिल रहा है। यह गांडीव है आपका। इसका इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं? भौतिक भोगों से विरक्ति। इसके इस्तेमाल से क्या होता है? जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे वैसे वैसे भौतिक भोगों के प्रति विरक्ति होती जाएगी, और जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे ऐसे ऐसे भगवान में अनुरक्ति होती जाएगी। तो इससे बड़ा गांडीव कोई हो सकता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सवाल आता है सद्बुद्धि का कि भगवान सद्बुद्धि किसे देते हैं? उसे ही देते हैं जो उनके शरणागत होता है। भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि युगतम येन मामू पयान्ति ते, कि जो प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लगे रहते हैं उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं, किसी दूसरे को नहीं। बुद्धि देते हैं स्वयं भगवान। अभी तक आपके पास भौतिक बुद्धि है। जिन लोगों ने भगवान की शरण में जाने का प्रयास किया है उनकी बुद्धि में भौतिक बुद्धि का पुट कम होके और आध्यात्मिक बुद्धि बढ़ती चली जाती है। यही बुद्धि आपकी जो भौतिक थी भगवान के सानिध्य में आके, गुरु के सानिध्य में आके, भक्तों के सानिध्य में आके, ये भौतिक बुद्धि जो है आध्यात्मिक बनती जाती है और आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा ही आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भौतिक बुद्धि के द्वारा नहीं। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? शील भोपाल की